आत्मस्वरूप की स्थिति में स्थित है और हम सबको आत्मस्वरूप में शक्तिशाली बनाने के लिए उपस्थित हो चुकी हैं आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी। हम एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय बहन जी, बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान का और आत्मा के चिंतन का अभ्यास कर रहे हैं। 1974 से आप विश्व सेवाओं के लिए दिल्ली पांडव भवन में समर्पित होकर अपनी विश्वव्यापी सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली पांडव भवन से संबंधित जितने भी सेवा केंद्र हैं, आप उनका कुशल संचालन करती हैं। नॉर्थ इंडिया का जूरिस्ट विंग का आप डायरेक्टर हैं और आपको हायर एजुकेशन लौकिक में प्राप्त होने के कारण आपकी हर विषय पर बहुत मास्टरी है। आप प्यारे बाबा के चारों ही विषयों को पासवी डोनर होकर पास किए हुए हैं। ऐसी त्यागी तपस्वी धारणा की धनी आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी से हम निवेदन करेंगे कि आज का आत्मानुभूति के लिए जो बेहद की वैराग्य वृत्ति आवश्यक है उस पर हमें मार्गदर्शन दे आदरणीय दीदी।
ओम शांति। सब बोलेंगे ओम शांति। बहुत अच्छा। अच्छा तो हमें कहा है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए हम कैसे अपनी आत्म स्थिति बनाएं, क्योंकि ये तो हम सब जानते ही हैं कि सभी बातों की जड़ दे अभिमान है। ये ज्ञान हम सबको है ना, ये ज्ञान सबको, कोई है जिसको ये ज्ञान नहीं हो? क्योंकि पहला सबक ही बाबा यही पढ़ाता है कि देह भान ने आत्मा को कितना नीचे ला दिया। सतयुग त्रेता में आत्म अभिमानी थे, भले आत्मा का ज्ञान नहीं था, वहां ये मालूम नहीं था मैं आत्मा हूं तुम भी आत्मा हो ऐसे कहते नहीं थे, और आत्मा परमात्मा की संतान है, नहीं। नेचुरल वृत्ति में, कॉन्शियस में मैं आत्मा हूं ये रहता था। जैसे आज की दुनिया में कलयुग के अंदर हर एक को नेचुरल कॉन्शियस में क्या है, देह का भान, यहां तक कि इतनी तमो प्रधानता है कि ये भी नहीं मालूम कि ये जो पुतला है ये जड़ है और इसमें कोई चेतन शक्ति है जो इसको चला रही है, इतना भी नहीं मालूम। फुल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, और वो ना मालूम होने के कारण 100% नेचुरल बॉडी कॉन्शियसनेस, देखना उठना बोलना सोचना हर बात। इसलिए उनको आत्मा समझने में भी बड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, फिर परमात्मा समझने में तो बहुत ही टाइम लगता है। तो उसी कंट्रास्ट में सोचो कि सतयुग और त्रेता में हम आत्माएं नेचुरल आत्म अभिमानी थी, और इसलिए हम सब उस समय कर्म इंद्रियों के राजा बनकर चलते थे। देह के संबंधों से हम नष्टो मोह थे। उसी की तो कहानी भी शास्त्रों में आती है ना, एक मोर ध्वज राजा की, कहा कि बेटे को चीरो और आंसू भी ना गिरे। हाँ, तो कितना नष्टो मोह होगा, तो वो किस आधार से, क्योंकि देह के संबंध का दैहिक भान नहीं, संबंध ये है पर वो दैहिक भान जो मोह लाता है वो नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति है। फिर जब द्वापर में पहुंचे, हाँ, धीरे धीरे ये ज्ञान आप सबको है कैसे देह अभिमान आ गया, फिर इतना बढ़ गया कि कलयुग की हालत तो आप देख ही रहे हो। पर आप सभी बाबा के वे भाग्यशाली रतन हैं जिन्होंने जीवन की सत्यता को पहचान लिया। और क्यों पहचान लिया? क्योंकि एक तो आपका ये पार्ट है, हाँ? बाबा कहता है ना, जो देवता कुल की आत्मा होगी वो आपे ही बाबा की बन जाएगी ना। दूसरा, आपने द्वापर और कलयुग में इतनी भक्ति की, इतना भगवान को पुकारा, इतना उसको याद किया और इतने उसके साथ वायदे किए थे। वायदे याद आता है आपको? हाँ, क्योंकि वो तो पिछले जन्म में किए थे, याद आता है। कईयों ने इस जन्म में भी किए होंगे, जिन्होंने भक्ति इस जन्म में की तो इस जन्म में भी कहा होगा, प्रभु जी दर्शन दो, बस मैं आपका ही हूँ और किसका नहीं, बस मैं आपका ही कहना मानूंगा। कईयों ने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन किया तो है, हमने भी पीछे किया तो है। बिना किए तो बाबा अपना ईश्वरीय अधिकार देता नहीं। तो अब बाबा कहते हैं, इसलिए अब मैं आप बच्चों को ही ईश्वरीय संतान होने का ये जन्म सिद्ध अधिकार देता हूँ। भगवान से हमको ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया, तो वो संबंध हमारा किस आधार पर जुड़ा? बोलिए, मैं आत्मा हूँ। इसलिए बाबा ने सबसे पहला सबक यही सिखाया, क्योंकि इसके बिना हमारा ईश्वर से नाता नहीं हो सकता। देह का नाता देहधारियों के साथ है, दैहिक संबंधों के साथ है। दैहिक माता पिता ने जन्म दिया तो देह का जन्म दिया, परंतु आत्मा मैं जो अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ, चाहे अभी कैसी भी हूँ, ये श्री बाबा को भी पता है। बाबा कहता है, बच्चे तुम कितने पतित बन गए, आत्मा काली बन गई, मैं उसे गोरा बनाने आया हूँ, कंचन बनाने आया हूँ। ये भगवान को भी मालूम है, भगवान को ही मालूम है। हम तो अपने को भले मूर्ख नीच पापी कहते चले आए, लेकिन किया तो फिर भी वही का वही, छोड़ा तो कोई भी विकार नहीं। पर जब बाबा आया और बाबा ने हमें आत्मा की पहचान दी, बच्चे ये सभी विकारों की जड़ दे अभिमान है, और दे अभिमान के कारण से देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के वैभव, जो कुछ इस दुनिया में दिख रहा है, सुन रहा है, उन सब में फंस गए। बंधाएं में हम आत्मा बन गई। जैसे किसी को आप, हाँ, रस्सियों से बांध दो, एक हमारा चित्र था, अभी भी होगा कईयों के पास, एग्जीबिशन में भी लगाते थे, आजकल चेंज होते रहते हैं ना चित्र, थोड़े टाइम पहले का था कि ये गृहस्थी खड़ा है और उसको यहां से भी बांधा हुआ है, यहां से भी बांधा हुआ है, यहां से भी बांधा हुआ है, हाथ भी बांधे हुए, पैर भी बांधे हुए, और उसके ऊपर एक गठड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी चढ़ाई हुई है। क्यों? देह भान ने हमें बंधाए मान आत्मा बना दिया। अब भगवान को तो हम बच्चों से बड़ा प्यार है, है? हाँ या ना? नींद तो नहीं आ रही या भगवान के प्यार में खोए हुए हो? उसमें भी आ जाती नींद, है ना? भगवान के प्यार में खो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध तो रहती नहीं, फिर वो चाहे पहुंच जाए कोई और लोक में, पर समझेगा मैं परलोक में हूँ, परम धाम में बैठा हूँ। तो बाबा ने हम बच्चों को उन सब रस्सियों से मुक्त किया, सब रस्सियों से। अगर एक मान लिया जाए, आप सीन बनाओ कि कोई को आपने रस्सियां बांध दी ढेर सारी, कोई मोटी, कोई पतली, कोई बहुत पतली, कैसा लगता है? फिर कोई उसका भला मानस जाके उन रस्सियों को खोलता जाए तो उसकी क्या फीलिंग होगी? कितनी एकदम बंधन मुक्त फ्री, हाँ? और एकदम स्वच्छंद पंछी उड़ता, आएगी ना ऐसी फीलिंग कि अब तो मेरा दुख भी कट गया, हाँ? चाहे दुख का पहाड़ सामने ही खड़ा हो, लेकिन तो भी उसको आएगा अब मैं स्वच्छंद हो गया। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को आत्मा की समझ देके इन देह की रस्सियों से मुक्त कराया है, बंधनों से मुक्त कराया है। जितने भी बंधन है, चाहे वो कर्मों के बंधन है, चाहे वो मन के बंधन है, चाहे वो संस्कारों के बंधन है, चाहे वो स्थूल रूप से जिम्मेवारियों के बंधन है, उन सब का बीज देह अभिमान है। बाबा की मुरली में कई बार आता है, बच्चे अपने बंधनों की लिस्ट निकालो। हमें एक बार क्लास वालों को ये काम दिया था, मुरली में ही आया था, तो हमने कहा कि जो ज्यादा से ज्यादा बंधनों की लिस्ट लाएगा उसको नंबर 1 मिलेगा, और उसमें माताएं होशियार निकली। क्यों? सच सच लिख दिया ये बंधन है, हाँ? सच सच लिख दिया। भाई फिर भी थोड़ा सा, हाँ, समझते हैं मैं तो जो चाहूं कर सकता हूँ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली आत्मा कितनी बंधी हुई है, मैं जो चाहूं कर सकता हूँ, ये भी एक बंधन है, ये भी एक बंधन है, क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आज की मुरली भी जब सुनी, महात्यागी की निशानियां सुनी ना, मैं अच्छी हूं, ये भी एक सूक्ष्म बंधन है, इसका भी त्याग करना है। अब आप सोचो, क्या दुनिया में ऐसी कोई ताकत है जो ये समझ दे सके? कितना ही बड़ा कोई मां मंडलेश्वर, ज्ञानी, पंडित, स्कॉलर हो, परंतु मैं अच्छी हूँ, मेरी बुद्धि अच्छी है, मैं होशियार हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, ये भी नहीं सोचना, इसकी भी कॉन्शियस न रह जाए, इतना बाबा हमको त्याग सिखलाता है। तो ये बंधन कैसे हम इससे मुक्त होंगे? ये प्रिय लगते हैं, इनका एहसास बाह्य रूप से नहीं हो पाता, इतने सूक्ष्म होते हैं, तो इनसे भी मुक्त होने के लिए बाबा ने हमें जो त्याग का भी त्याग कहा है, परंतु उसका जो आधार है वास्तव में वो सोल कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये भी सूक्ष्म देह भान है। मैं अच्छी हूं, वो मैं कौन सी, वो मैं कौन सी? और बाबा ने हमें मैं कौन सी दी है? बाबा ने हमें सबसे पहले मैं दिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, सबसे पहली मैं ये है। हम कई बार कहते हैं ना मैं आत्मा हूं, समझाते हैं सबको, तो हमें दादी गुलजार बहुत अच्छा कहती है। दादी कहती, ये तो तुमने सोचा मैं आत्मा हूं, लेकिन तुम कैसी आत्मा हो? आत्मा तो सारे ही है दुनिया में, सारा विश्व ही आत्माएं हैं। अब उस दुनिया के अंदर पाप आत्माएं भी हैं, तमो आत्माएं भी हैं, अपने को महान आत्माएं भी कहलाने वाली हैं, है ना, सब प्रकार की आत्माएं। आत्मा तो वो भी है। अब जिनका आपको उद्धार करना है, हाँ, सेवा करनी है, उनका कल्याण हो जाए, तो वो भी सब कौन है? आत्मा है। और उनको आपको देखना भी आत्मिक दृष्टि से है, नहीं तो उनका उद्धार होगा नहीं, आपका ज्ञान का तीर लगेगा नहीं। बाबा कहते हैं आपकी तलवार में जौहर भरेगा नहीं। तो पर मैं स्वयं में कौन सी आत्मा हूं, ये भी बाबा ने हमें समझ दी है। तो दादी हमें समझाती है कि तुम कौन सी आत्मा हो। आप सबने कभी सोचा मैं कौन सी आत्मा हूं? इस समय बाबा ने हमें सबसे पहला स्वमान, सबसे पहली कॉन्शियस यही दी, बच्चे तुम एक शुद्ध आत्मा हो, आई एम ए प्योर सोल। क्योंकि पवित्रता ही हमारा धर्म है, तो मैं ऑर्डिनरी आत्मा नहीं हूं, साधारण नहीं हूं। हर आत्मा परमात्मा की संतान है, पर मैं वो संतान हूं जो शुद्ध आत्मा हूं, क्योंकि मैं दैवी कुल घराने की आत्मा हूं। मेरा भविष्य देवता है, और इस समय मैं डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं, और मेरा संबंध परम आत्मा से हुआ है। तो हमें अपने उस स्वमान में, मैं रियल में जो हूं और जैसी हूं, कैसी हूं, कैसी हूं, बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं ना, मैं जो हूं जैसा हूं, जो वह मुझे पहचानते हैं उनका योग मेरे साथ लगता है, और मैं भी उसकी संतान जो हूं जैसी हूं उसको समझ के चलते हैं, तो भगवान से बुद्धि योग लगा पाते हैं। अब जैसे हम बाबा को अपना जीवन बलिहार करने के लिए भी, हाँ, या भक्ति में भी कहते हैं, भगवान हम जो हैं जैसे हैं तेरे हैं, हाँ, पर अब तो हम सच में ही हो गए उसके, जो हैं जैसे हैं उसके हैं। लेकिन मेरा जो रियल स्वमान है, मैं आत्मा अपने आप में जो हूं, मींस मेरी जो ओरिजिनलिटी है, वो मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। जैसी हूं मींस मुझ आत्मा के अंदर जो नेचुरल गुण है, मेरे जो निजी संस्कार हैं, एक है देह भान के कारण जो संस्कार हमारे बन गए, वो तो आप जानते ही हैं कैसे संस्कार हैं, वो तो पुराने संस्कार हैं, वो तो रहने नहीं चाहिए, और उन्हीं को मिटाने की हम मेहनत कर रहे हैं। और राजयोग में ही वो ताकत है, बाबा की याद में ही वो ताकत है, और कोई भी तरीका नहीं जिससे हम अपने पुराने संस्कारों का परिवर्तन कर सकें, कोई तरीका नहीं। सारी दुनिया ढूंढ लो, सारे शास्त्र देख लो, पढ़ लो, सब कुछ वो 63 जन्मों में किया ही है, अब जरूरत नहीं है करने की, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप आत्मा जैसी हो, मीन्स जो आप अपने मूल में हो। मूल जानते हो ना किसको कहते हैं, हा? जैसे कोई चीज को आप खूब पॉलिश वॉलिश कर दो, है सजा सजू दो, खूब हीरे हीरे लगा दो उसके, और बाद में को आपको पता है अंदर इससे ये क्या है, किस चीज की बनी हुई है, हा? आजकल तो मिट्टी के ऊपर भी इसे सजा देते हैं, जो लगता है गोल्ड पे सजा हुआ है, क्या कमाल है। तो पूछते हैं ये इसका ओरिजिनल क्या है, हा? मूल क्या है। या जैसे आप देखो वृक्ष है, हा? बहुत सुंदर लग रहा है, फल फूल लगे हुए हैं, फिर हम ध्यान कहाँ पर देते हैं, इसका मूल क्या है, हा? इसका जड़ क्या है, इसका बीज कौन सा है। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे आप आत्मा अपने मूल में जो हो, उन संस्कारों को नहीं देखो जो हमारे बाद में देहभान के कारण बने, नहीं, मेरे जो आदि अनादि संस्कार हैं वो मेरा मूल है। अनादि माना जो हमेशा रहा, जब मैं आत्मा परम धाम में थी और जब मैं आत्मा ये रोल प्ले करती रही, और आज बाबा ने मुझे वो मेरी सच्चाई सत्यता बताई कि बच्चे तुम आत्मा अपने स्वधर्म में बहुत पवित्र और शांत हो, यह आपका मूल है, आप सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, ये मेरे निजी गुण हैं, निजी संस्कार है, इन गुणों से जो मैं कर्म करती हूँ वो मेरे संस्कार हैं। अब यही पुरुषार्थ चाहिए, बल्कि सिर्फ पुरुषार्थ नहीं, ये मेरी नेचर बन जाए कि मैं जैसी हूँ। जैसे देखो देहभान की भी नेचर है ना, माना किसमें बहुत चुप रहने की है, बोलता ही नहीं, टाइम पे भी नहीं बोलते। तो कोई कोई कहता है भाई क्या आपकी नेचर एकदम, कहते मैं क्या करूं, मैं चाहता भी हूं मैं बोलूं पर मेरी नेचर ही नहीं है, मैं इसलिए चुप ही रहता हूं, हा? तो उसको उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। जो बहुत बोलता है उसको तो बार बार कहना पड़ता है चुप कर चुप कर चुप कर, है, और जो बेचारा चुप है वो कहता है तो मेरी नेचर ही है, मैंने थोड़ा चुप करने की मेहनत की, है ना ऐसा। और जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं हम चुप कर, कहता मैं कैसे करूं, मेरी तो नेचर ही बोलने की है, उसको कोई कहेगा भी नहीं, कुछ पूछेगा भी नहीं, फिर बीच में आके बोलेगा, है ना, उसको कोई उसमें बोलने में मेहनत नहीं और उसको चुप रहने में मेहनत नहीं। तो ये संस्कार है ना, नेचर है ना, क्योंकि ये देहभान की नेचर बन गई। हमने जो जो पार्ट प्ले किया इस देह के द्वारा, जो जो कर्म किए वो हमारे भिन्न 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 स्वभाव बन गए। जैसे कोई बहुत ढीला होता है, कोई बहुत चुस्त होता है, हा? फर्क होता है ना। वो कहेंगे मैं तो चलती ऐसी हूँ, ढीला डाला, जब दिल करता है तब काम करती हूँ, नहीं करता तो नहीं करती हूँ। और एक कहेगा नहीं टाइम पे होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, होता है ना, उसकी वो नेचर हो जाती है। तो जब हमारी कोई बात की नेचर बन जाती है, इसलिए हमने आपको ये बात सुनाई, तो उसमें व्यक्ति को कभी भी कोई मेहनत आभास नहीं होती, क्योंकि वो आपके नॉर्मल नेचर है। अब बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे आप देहभान की नेचर अनुसार तो चलते आए हो, अभी भी वही काम कर रही है, लेकिन बाबा हमारे को चेंज कर रहा है, उन आकर्षणों से, उन बंधनों से, उन संस्कारों से बाबा मुक्त कर रहा है। तो बाबा कहते बच्चे आपकी ओरिजिनल नेचर कौन सी है, क्या ये नहीं सोचते हो? आपने देहभान की नेचर को ही अपना नेचर समझ लिया, वो तो टेम्परेरी है, वो तो इस जन्म की है और इस जन्म में भी वो सदा आपकी एक जैसी नहीं होगी, बदल जाएगी, जरूरत पड़ेगी, परिस्थिति के अनुसार भी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, अभी कोई की थोड़ी सुस्त नेचर होती है और घर के अंदर मेहमान आ जाए फिर दिखाए जरा सुस्ती। हाँ, कर सकते हैं ऐसे सुस्ती? नहीं कर सकते। उस समय तो भाग भाग के जाएगी, कहेंगे आज तो इसने कमाल कर दी, रोज तो ये कुर्सी में बैठी रहती थी, आज तो ये किचन भाग, इधर भाग, उधर भाग, करना पड़ा ना। तो हमारी जो मूल में नेचर है, आत्म स्थिति से जो बनेगी, क्योंकि वो मेरी आत्मा की नेचर है, मुझे वो बनानी है। आत्मा की नेचर कौन सी है? बाबा ने हमें वो समझ दिए। बच्चे, आत्मा के निजी गुण ही आत्मा की निजी नेचर है, और वो निजी गुण हैं वो आप जानते हो, सारे सबको मालूम है। लेकिन कभी आपने चेक किया कि मैं अपने इन ओरिजिनल गुणों के अनुसार चलती हूँ, चलती माना एक्ट में आती हूँ, उन्हीं गुणों के अनुसार मेरा सब कुछ, सोचना, बोलना, उठना, बैठना, देखना, वैसा ही एक्ट में आता है? ये बहुत जरूरी है। जैसे देखो, जब प्यास लगती है तो व्यक्ति क्या कहता है? नहीं पता। अरे छोटा सा बच्चा भी भागा आता, मम्मा पानी दे दो, नहीं पता। जब प्यास लगती है तो क्या कहते हो? पीछे वाले नहीं कहते? हाँ, नहीं कहते? क्या बात है, आप लोग सोच रहे हो कोई और गहरी बात होगी। हाँ, इतनी सिंपल बात दीदी कैसे पूछ सकती है, इसलिए बड़े गहरे सोच में चले गए हो। अरे भाई, यही तो कहते हैं प्यास लगी है, हाँ? जल दे दो। क्या कहते हैं जब प्यास लगती है? पानी दे दो। कोई आपके आगे है क्या? दे दो, नीलू दे दो। वाह भाई वाह, इसलिए चुप बैठे हैं। उस समय कोई आपके आगे दूध का भी गिलास लाएगा, आप कहेंगे पहले पानी दे दो। क्यों? क्योंकि पानी में ये गुण है कि वो प्यास बुझाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नेचर में शीतल है। पानी का नाम सुनते ही शीतलता महसूस होती है। चाहे बॉइल्ड हॉट वाटर भी पड़ाओ, उसको आग से हटा दो, अपने आप क्या बन जाता है? शीतल जल। क्योंकि उसकी नेचुरल नेचर शीतलता है। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे आपकी जो मूल नेचर है ओरिजिनल, वो प्योर है, वो पीसफुल है, वो लवफुल है, वो पावरफुल है, वो नॉलेजफुल है। लेकिन आप देह भान हटाओ, जैसे आग ने जल को गर्म कर दिया, उसकी जो नेचर शीतलता है उस समय के लिए चली गई, आग हटाई और वो फिर से वैसा ही अपनी नेचर में आ गया। तो देह भान भी एक ऐसी ही आग है, समझा? जो आत्मा की ओरिजिनल नेचर को गुम कर देता है। और इसीलिए कभी देखो तो शांत है, कभी देखो तो अशांत है, घड़ी में दुखी हो जाते हैं, घड़ी में घृणा नफरत आ जाती है। क्यों? मूल में तो मैं आत्मा लवफुल हूं, प्रेम स्वरूप हूं, या घृणा स्वरूप हूं? क्या प्रिय? प्रेम, शांति। फिर ये शांति कहां से आई? तो उसका यही कारण है कि मैंने खुद को अपने उस ओरिजिनल भान में कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं जो जैसी हूं, उसमें टिकाया नहीं, कभी टिकाया कभी नहीं, कभी थोड़ी देर कभी ज्यादा देर, कभी सारा दिन भूले रहे, सारा दिन बीत जाता है तेरी मेरी बातों में, धंधा धोरी में, ये कर वो कर ये कर, वो दीन जहान की सारी दुनिया। फिर होश आती रात को, बाबा अच्छा मेरा ये काम हो गया, बस तब बाबा याद आएगा। हमारी दादियों ने वो मेहनत की है, पता आपको, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने वो बहुत शुरू में अपने आप को पहले दिन से ही, जैसे हम कोई बात का घोटा लगाते हैं ना, ऐसे घोटा लगाया। ये शब्द थोड़ा सिंपल है, अंदर ही अंदर बाबा ने अभ्यास किया। जैसे ये समझ मिली, श्री बाबा ने ये ज्ञान दिया, बच्चे ये देह भान सभी पापों की जड़ है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा का मेरे साथ नाता है, देह का नहीं। तो उसी समय ब्रह्मा बाबा की बुद्धि सबसे पहले बेहद में चली गई, जो कुछ देह से जुड़ा हुआ था बाबा उससे डिटैच होता गया। कईयों को समझ में नहीं आई ये बात, बाबा को देखते थे तो उसी रूप से ही देखते थे, दादा लखी है। इसमें निराकार परम आत्मा प्रवेश होकर ज्ञान दे रहा है, उस तक उनकी बुद्धि नहीं गई। लेकिन ब्रह्मा बाबा एकदम रियलाइज कर लिया कि ये सब देह से जुड़ा हुआ है, इन सब से मैं न्यारा हूं, मैं एक आत्मा हूं, और ये भी जो सब है ये भी सब आत्मा है, इनका मेरे साथ वो दैहिक नाता टेम्परेरी है, अब वो नहीं, अब मैं उस पिता का बच्चा हूं और ये भी उसके बच्चे हैं। बाबा की बुद्धि इतनी विशालता में, इतनी बेहद में चली गई जो दूसरे समझ भी नहीं पाए। बाबा की बेटी ने एक बार हमको सुनाया, जो सबसे छोटी है, एक तो निर्मल शांता दादी ना, एक पुट्टू जो शरीर छोड़ गई, एक और छोटी सबसे जो थी, सूर्या उसका नाम है, वो अभी बॉम्बे में है। तो बहुत साल पहले की बात है, वो दिल्ली पांडव भवन में आई थी, हम भी उस समय छोटे छोटे थे, तो वो रही थी कुछ दिन। तो हमने बाबा की कई बातें उनसे हम करते थे, भोजन पर बैठते थे, इधर उधर कई बार उनके साथ गए। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमें बहुत प्यार करता था, लौकिक पे बच्चों से बाबा का बड़ा प्यार था, और बच्चों को कुछ चाहिए बाबा उसमें जरा भी देरी नहीं करता था, क्योंकि संपन्न परिवार था और बाबा वैसे भी लौकिक में भी अपने स्वभाव में जैसे एक उदार होते हैं ना, कोई थोड़े से वो होते हैं लेकिन कोई थोड़े फराक दिल होते हैं, तो बाबा अपने ओरिजिनल लौकिक संस्कारों में भी बहुत उदार और फराक दिल था। तो बाबा बड़ी दिल से जो बच्चा जो चाहता था फटाफट ला देता था। तो कहा हमने तो कभी ऐसे बाबा को देखा ही नहीं था कि बाबा हम कोई बात कहें और वो हो ना। तो कहा जब श्री बाबा बाबा में आ गया, हमें समझ नहीं आया, और बाबा के पास कई बच्चियां आकर के रहने लग गई हैं, जो दादियां आज हैं हमारी, उस समय वो भी तो छोटी छोटी आयु में थी, अपने परिवारों से आई, बेटी कोई की बहू, बड़े धनाढ्य संपन्न परिवारों से बाबा के पास आई और एकदम न्यौछावर हो गई, समर्पित हो गई। हाँ, श्री बाबा को जैसे समझा तो कहा कि बाबा के पास ऐसे चार पांच बहनें खड़ी थी और मैं भी बाबा के पास गई, तो मैं तो उसी लाड खोड में ही बाबा के पास जाती थी, छोटी बेटी थी वैसे भी, तो बाबा देखते ही जैसे गले लगा लेता था, गोदी में ले लेता था। तो कहा मैं खड़ी हूँ बाबा के पास और बाबा दूसरी बहनों को गोदी में ले रहा है और मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो मैं जाके कमरे में कुंडी लगा के खूब रोई, बाबा का ध्यान नहीं गया। जब शाम हो गई तो बाबा ने जसोदा से पूछा, अपने युगल, उनका नाम जसोदा था, का सूर्या कहाँ है? तो जसोदा को तो पता था अंदर से, तो जसोदा ने बड़े सार में बाबा को इशारे में कहा, वो थोड़ी सी, क्योंकि वो तो रोई थी, डिस्टर्ब थी, तो वो इसलिए थी कि उसने कहा बाबा ने मेरे को गोदी में क्यों नहीं लिया और मेरे को ना देख करके औरों को बिठा लिया अपनी गोदी में, पास में बिठा लिया और उनको प्यार किया और मुझे नहीं किया। तो कहा धीरे धीरे हमें समझ में आया कि बाबा की वृत्ति इतनी आत्मिक बन गई है और इतनी बेहद की हो गई है कि अब बाबा को ये अंतर नहीं लगता कि ये मेरी लौकिक बच्ची है, ये अपनी है, और ये अलौकिक कोई पराई है। बाबा के दिल दिमाग से ये अंतर समाप्त हो चुका है। उनको भी बाबा उसी ही वृत्ति से देख रहा है कि ये मेरी बच्चियां हैं। तो जो देह भान था, देह का संबंध था, बाबा को उसकी विस्मृति होती गई, इतनी बाबा की आत्मिक दृष्टि बन गई। आप सोचिए, ऐसे ही नहीं वो ब्रह्मा कहलाया, ऐसे ही नहीं वो विश्व की नंबर वन आत्मा बन गई, ऐसे ही नहीं वो भविष्य मोहन कहलाया, गोपाल कहलाया। हाँ, मोहन माना ही मोहन। तो आरंभ से ही शिव बाबा की प्रवेशता होते ही ये पहचान मिलते ही कि हम आत्माएं हैं, शिव बाबा की संतान, हम आत्माएं हैं, ये शरीर नहीं। तो ये शरीर का जरा सा भी भान हमें शिव बाबा से दूर कर देता है, जुड़ने नहीं देता। तो सूर्या बेन ने कहा कि हमें बहुत बाद में समझ में आई ये बात, उस समय हमें अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए मैं खूब रोई, बड़ी नाराज हो गई बाबा से। जब धीरे धीरे समझ में आ गया कि ब्रह्मा बाबा अब सिर्फ मेरा पिता नहीं है, ये इन सब का पिता है, तो फिर हमने फील करना छोड़ दिया। तो जो देखो हमें देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के वैभव अब तक भी आकर्षित करते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ ना, नहीं मिलता तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हालत क्या हो जाती है। बाबा की तो कितनी बातें सुनाए, कितनी बातें सुनाए, लेकिन उन सब बातों के पीछे जो मुख्य पुरुषार्थ रहा वो यही रहा कि मैं एक आत्मा हूं और एक कल्प कल्पांतर की इस वर्ल्ड ड्रामा में हीरो रोल प्ले करने वाली एक एक्टर हूं और मेरा डायरेक्टर शिव बाबा है। बाबा ने अंदर ही अंदर जिसको कहें, बार बार, जैसे अपने आप को अभ्यास कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, ऐसा अभ्यास किया। हम अपने से पूछें, हम अंदर कितना ध्यान देते हैं इस बात का। बाबा इसलिए मुरलियों भी कहते हैं, बच्चे जिसको भी देखो आत्मा देखो और ज्ञान भी सुनाओ तो आत्मा देखकर सुनाओ। जब आत्मा देखकर ज्ञान सुनाओगे तो आपकी बात दूसरे के दिल पर लगेगी, कहता है ना बाबा। बाबा ने यहां तक अभ्यास किया कि माना सामने से बाबा की युगल पानी का ग्लास लेके आ रही है बाबा के लिए, जसोदा सामने से पानी का ग्लास लेके आ रही है, तो बाबा अपने मन को समझाता था, ये जसोदा नहीं, ये मेरी युगल नहीं, ये आत्मा है, ये शिव बाबा की संतान है। ऐसे अंदर, कोई मुख से कहने की बात नहीं। तो क्या हम ये अभ्यास नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? चाहे हम ऑफिस में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे धंधे धोरी में हो, हाँ, चाहे कहीं भी, किधर भी, कोई भी वायुमंडल में खड़े हो, क्या हम ये अभ्यास नहीं कर सकते? कोई मुख से तो कहने की बात ही नहीं है ये। बाबा की बहू सामने से आ रही है, बाबा को पता है ये मेरी पुत्र वधु है और बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, मेरी इतनी ध्यान देती है, रिगार्ड देती है मेरे को दिल से, तो और ही मोह जागता है ना, देवान और वो हो जाता है बड़ा। तो बाबा अपने मन को समझाता था, ये आत्मा है, ये राधे नहीं, ये आत्मा है, राधे इसके शरीर का नाम है, ये आत्मा है, ये भी परमात्मा की संतान है, पुत्र वधु तो इसका रोल है सिर्फ थोड़ा सा। ऐसे बाबा ने अंदर ही अंदर निरंतर ये अपने को काम देता रहा, अभ्यास करता रहा। इसलिए देखो बाबा कितनी जल्दी संपूर्ण बन गया, और मम्मा भी ऐसे अभ्यास करती थी। मम्मा तो 2:30 बजे उठकर बैठ जाती थी। आज हम सब में वो ताकत भल नहीं है, अभी सेवा का विस्तार भी बहुत है, आप सबके ऊपर जिम्मेवारियां भी बहुत हैं। उस समय ऐसी जिम्मेवारियां नहीं थी, ये राइट है। मम्मा रात को जल्दी सो भी जाती थी, 8-9 बजे तक सो जाती थी, और सुबह 2:30 बजे बैठकर योग करती थी, और ऐसी आत्म अभिमानी स्थिति मम्मा की होती थी जो मम्मा का फिजिकल पोस्चर भी दृढ़ स्थिर हो जाता था, स्थिर एकदम। ऐसे चौकड़ी मार के हमें ऑलराउंडर दादी ने एक दिन सुनाया, का हमें पता था मम्मा 2:30 बजे उठ के योग करती है अपने कमरे में, तो हम कई बार उस समय उठ करके छिप करके मम्मा को देखते थे खिड़की से मम्मा के कमरे की, कि मम्मा कैसे बैठी है। तो कहा मैंने देखा तो मम्मा की आंखें ऐसे लाल और बड़ी बड़ी जैसे शेरनी होती है, इतनी अलर्ट मम्मा बैठी थी। हमको तो सुबह उठते हैं तो थोड़ा सुस्ती होती है ना, फिर कहेंगे थोड़ा पानी का छींटा मारो, थोड़ा ये करो, और दादी ऑलराउंडर ने कहा फिर हमें इतना शौक चढ़ता था कि हम भी ऐसे योग करें, लेकिन हमको झटका आता था, तो हम फिर करना है ऐसा योग। दादियों ने भी इतना पुरुषार्थ किया, कहा हमने दादी को पूछा कि दादी फिर आप क्या करते थे, झटका नहीं लगाते थे, हम तो लगा देते हैं झटका। दादी ने कहा नहीं, हमको अंदर से रोना आता था कि मेरे को झटका क्यों आया, तो मैं सरसों के तेल की सिलाई का आंख में लगा के जाती थी। सोचा, देखो समझ में आई आपको ये बात, सरसों का तेल कड़वा होता है ना, तो जैसे सुरमा पहनते हैं ना, तो उसमें डुबो के आंख में वो सरसों का तेल लगा लेती थी, तो आंख बंद ही नहीं होती थी, झरझर पानी बहता है का, इतनी अंदर लगन होती थी हम भी मम्मा जैसा योग करें। तो ये क्या कारण था, एक ईश्वरीय लगन और दूसरा मैं शिव बाबा की संतान आत्मा हूं, देहभान नहीं। देहभान सुस्ती दिलाता है, देहभान हमें ढीला करता है, चाहे वो उसका रूप भिन्न भिन्न है, सबका एक जैसा नहीं है। कोई ये भी नहीं कि सारा समय कोई आप देह अभिमानी रहते हैं, ये कहने का भाव नहीं है, लेकिन भाव ये है कि हम सूक्ष्म में अपने ऊपर कितना अटेंशन रखते हैं। समझ तो हम सबको है, मैं आत्मा हूं। आपको रात को कोई हाथ लगा के भी पूछे तुम कौन हो, तो आप यही कहोगे मैं आत्मा हूं। हम सबकी भी रग रग में पक्का है, ऐसा नहीं है ये नहीं पक्का, लेकिन हमने अपनी वृत्ति तक उतनी सूक्ष्मता में क्या सचमुच अपना ऐसा स्वभाव बनाया। नेचुरल हमें ये याद रहे, माना याद करना ना पड़े, याद शब्द की भी जरूरत ना पड़े, तो इससे क्या होगा कि पुरानी दुनिया पुरानी दिखेगी, मायावी दिखेगी। अभी फिर भी कभी कभी अच्छा ये दुनिया में ऐसा है ऐसा है, और आज इंटरनेट के जमाने ने तो सबकी बुद्धि को बिखेर दिया, एकदम बिखेर दिया, और कितना नीचे ले आया, कितना नीचे, कितना एक्स्ट्रा सुन लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा देख लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा बोल लेते हैं, वो सब भी हमें अपनी आत्म स्थिति में टिकने नहीं देता। क्योंकि हम जो कुछ देखते हैं ना, आत्मा ने उसे ग्रहण कर लिया। जैसे देखो हम भोजन खाते हैं, हाँ, और भोजन में हमने कई ऐसी चीजें खा ली जो हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता है या उसको जरूरत नहीं है, तो उसका हेल्थ पे इफेक्ट आता है ना, बॉडी पे। डॉक्टर भी कहता है उस दिन कुछ नहीं होगा, दो दिन तीन दिन बाद बॉडी भी लीवर भी बाहर फेंकना शुरू कर देता है उसको, वो किसी न किसी रूप से चमड़ी पे आ जाएगा या सांस पे आ जाएगा या कहीं ना कहीं आ जाएगा। ऐसे ही अब देखने का काम सिर्फ आंखें तो नहीं करती है, करती तो आत्मा है ना, ये आंखें करती है, बोलो, आत्मा करती है, आंखें नहीं करती। आंखें तो इंस्ट्रूमेंट है, देखने का काम आत्मा कर रही है। अब आत्मा ने इतना कुछ देख लिया, इंटरनेट पे देख लिया, ढेर सारी दुनिया देख ली, घर में चलो कोई बंदा नहीं है, आजकल तो ये रिवाज हो गया, घर में प्राणी नहीं है, प्राणी को देखना नहीं है, आया तो मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। माँ बाप को देखते ही बच्चे अपने कमरे में घुस जाते हैं और इंटरनेट पे सारी दुनिया देख रहे हैं, इससे तुम अपने माँ बाप को ही देख लो, वही अच्छा है, हाँ? और सोचते मैं बड़ा अकेला हूँ, मैं बड़ा शांत हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा न्यारा हूँ। नो नो, कान में लगा के सारी दुनिया सुन रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, और जो काम के सुनने की बात है, माँ आवाज लगा रही है वो सुनाई नहीं दे रही। सोचो, आप ऐसे नहीं है भले, लेकिन अटेंशन तो हमको भी रखना है ना, या नहीं रखना, हमारा ध्यान कहाँ कितना जाता है, ये पुरुषार्थ बड़ा जरूरी है। और उसके लिए बाबा कहते बच्चे ये बाह्य मुक्ता है, और बाह्य मुक्ता हमें आत्म स्थिति में आने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि मैंने जो कुछ सुना, जो कुछ बोला, जो कुछ देखा, आत्मा ने उसको ग्रहण कर लिया, और जब आत्मा ने उसको ले लिया, आत्मा के पास वो स्टोर हो गया, तो उसका इफेक्ट तो आत्मा पर आएगा ना। और वो इफेक्ट क्या आता है कि मैं आत्मा हूं, ये जाता है भूल, और क्योंकि वो जो कुछ देखा वो देवभान की दुनिया का देखा, तो स्वयं भी उसी ही कॉन्शियस में आ जाते हैं, इसलिए वो आत्म स्थिति बन नहीं पाती। समझ होते हुए भी, मुरली पढ़ते हुए भी, योग लगाते हुए भी, और वो एक्चुअल योग भी नहीं लगता, कनेक्शन आत्मा का हो नहीं पाता। जैसे आप देखो अपना सेल फोन आप रिचार्ज करते हो, कई बार आपने देखा होगा कि चार्जिंग हुई नहीं, लगा हुआ है फोन वहां ही, लेकिन वो अंदर से डिस्कनेक्ट रहा, वो तार उसको पकड़ नहीं पाई, तो बैटरी भी उतनी की उतनी रह गई। भले हम योग में बैठ गए, लेकिन अंदर से मैं डिस्कनेक्ट हूं, क्योंकि मेरी वृत्ति में तो बातें भरी हुई है सारी, जो मैंने सारा दिन प्ले किया, एक्ट में आया, देखा सुना, सपने में भी आ जाएंगी, नहीं भी आएंगी खैर, लेकिन धीरे धीरे वो संस्कार भी बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे आप इंट्रोवर्ट बनो, अंतर्मुखी बनो। माना ये भाव नहीं है कि मौन रख के बैठ जाओ, मौन भले रखो, पर बोलना एकदम छोड़ दो ये हमेशा तो नहीं कर सकेंगे ना। मौन अपने आप में एक शक्ति है और बहुत आवश्यक है, और यहाँ आपके लिए वो बड़ा आसान है, यहाँ पे आप उस साइलेंस का बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं, परंतु कारोबार में तो आपको बोलना पड़ेगा ना। पर बोलते हुए भी मैं अंतर्मुखी रहूं, ये हो सकता है? बताओ, हा? जो कहते हो सकता है वो हाथ खड़ा करो। कई सोच रहे हैं, कई सोच रहे हैं, हा? जिन्होंने हाथ खड़ा किया बहुत अच्छा, ताली बजाओ उनके लिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी ताली बजाओ। सोच रहे हैं ना, तो इसका मतलब आज ये सोचने का मौका लो कि ये मुझे करना है और ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूं भले, लेकिन मेरा ध्यान उस बातों में ना जाए। मैं सुन रही हूं लेकिन मेरा ध्यान उन बातों में ना जाए, मेरा ध्यान अंदर की ओर रहे। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपके सामने से क्रॉस कर गया, हम कहते हैं वो फलाना गया था, कहते मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान अपने में था। तो ऐसा हो सकता है ना, भले हमारे सामने कुछ भी हो रहा है, भले हमने कारोबार की बात कह भी दी, लेकिन हमारा ध्यान उसमें न जाए। कई बार नहीं, आपने वो मुरलियों में बाबा एक स्टोरी सुनाते हैं कि वो महात्मा ने मुख में मुलहरा दिया। मालूम है वो स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी मालूम है? मैं संक्षेप में बताती हूँ, लग रहा नहीं मालूम हाँ, कि एक सास और बहू थी, तो उनका आपस में थोड़ा चलता है। भाई ये नहीं सोचना सास बहू का ही चलता है, दो भाइयों का भी चल सकता है, ठीक है? वो तो कहानी ऐसे बन जाती है ना। तो बहू बिचारी बड़ी परेशान हो गई कि मेरी सास टुक 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 कुछ ना कुछ है बोलती है, डांटती है। गई अपने गुरु के पास, गुरु को कहा मैं बहुत वो हूँ, तो अभी भी मैं जाऊंगी ना घर तो वो कुछ ना कुछ बोलेगी। तो गुरु तो अनुभवी समझदार था, उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये मुलहरा देता हूँ। वो ताबीज जैसी उसको दे दी, वो था और कुछ नहीं, मुलैठी का टुकड़ा ही था। कहा तुम ये रख लो और जब तुम घर जाएगी, जैसी तेरी सांस बोलना शुरू करे तुम इसको मुंह में डाल लेना, और ये ध्यान रखना ये मुंह से गिरे नहीं, बस। उसने कहा ये तो बड़ा आसान है। घर गई और वही हुआ, घुसते ही उसको देखते ही सास ने तो बरसना शुरू कर दिया, और उसने भी फटाफट पर्स में से वो मुलहरा निकाला और मुख में डाल लिया। अब याद आया गुरुजी ने कहा था ये मुख से गिरे नहीं, अब मुख से गिरे नहीं तो मुख को रखा बंद, खोलेगी तो गिर जाएगा। अब उसका तो मुख रहा बंद, सास आखिर बोल बोल के चुप हो गई, झगड़ा हुआ ही नहीं, बच गया ना झगड़ा होने से। तो अगले दिन गई गुरु के पास, गुरुजी आपने तो बड़ा अच्छा किया, मुझे ऐसी ताबीज दी, उसका इतना जादू हुआ कि हमारा झगड़ा नहीं हुआ। गुरुजी तो समझ गया था क्योंकि ये चुप रही होगी, एक बोलता रहा एक चुप रहा तो झगड़ा होना ही कैसे था। तो गुरुजी मुस्कुराए, तो आगे कहती है गुरुजी पर एक बात है। गुरुजी ने कहा क्या? कहा वो जो बोल रही थी ना, वो मैंने सुना तो सुन के मेरे अंदर तो इतना उबाल चढ़ा, इतना गुस्सा आया, क्योंकि वो तो उल्टा सुल्टा बोल रही थी। अब कानों ने तो सुन लिया ना, ऐसे होता है, आप चुप रहे कोई उल्टा बोल रहा है आप सुन रहे हो, तो अंदर आता है मैं इसको कल बदला लूंगा, मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, हाँ मैं देखूंगा ये क्या कैसी है। ऐसे ऐसे संकल्प चलते उल्टे उल्टे नेगेटिव। तो उसने गुरु जी को ये बात कह दी। गुरु जी ने कहा अच्छा, तो उसने गुरु जी ने दो गोलियां रुई की निकाल के दे दी, का जब ऐसे हो ना तो कान में ये डाल लेना। तो गई वापिस, तो वही हुआ, सास ने बोलना शुरू किया, उसने मुंह में तो डाल ली ताबीज और कान में डाल लिए वो रुई के फोए, तो उसको सुनना भी बंद हो गया और शांति हो गई एकदम, क्योंकि उल्टा सुल्टा सुना भी नहीं। अब क्या हुआ कि वो सास का तो स्वभाव था बोलना, तो जब वो बोल रही थी तो उसका चेहरा, जब कोई गुस्से में बोलता है ग्लानी करता है तो उसका चेहरा कैसा होता है? ऐसे 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 होता है ना। तो वो उसका चेहरा देख रही थी कि मेरी सांस तो ऐसे लग रहा है मुझे गालियां दे रही है, तो उसको सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि वो सोचती रही कौन सी गाली दी होगी, मुझे क्या कहा होगा, क्या पता मेरे लिए बोला या मेरे पति के लिए बोला, चिंतन चिंतन चिंतन, सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन फिर गुरु के पास गई, कहा गुरु जी मैंने कान में वो डाल लिए थे, मैंने सुना कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे को फ्लां फ्लां गाली दे रही थी, मैं सारी रात नहीं सोई। गुरु जी ने तो माथा पकड़ लिया कि अब मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्यारे बाबा ने हमको इन सब बातों का इलाज दिया है। पता है ना, हमें गोली डालने की जरूरत है, ना हमें ताबीज डालने की जरूरत है, ना हमें रात जागने की जरूरत है। बाबा कहते बच्चे तुम देखते हुए भी मत देखो, तुम सुनते हुए भी मत सुनो, लेकिन ये कब होगा, जब आप अपना ध्यान अंदर की ओर लाएंगे। बाहर ध्यान रखते हो ना, ये क्या बोल रहा है, ये क्या पहन रहा है, ये कहां से आ रही है, इसके पास क्या चीजें हैं, इसकी गाड़ी का रंग कैसा है, इसकी कोठी की कल पुताई हुई है, आज मेरी भी कोठी की होनी चाहिए, मेरी चप्पल ऐसी है, उसकी चप्पल, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बाबा कहते ये नहीं करो, ये बाह्य मुखता है, ये बाह्य मुखता ही हैरान परेशान करती है। अंतर्मुखी बनो, ध्यान अपना अंदर लाओ, मीन्स आत्म चिंतन करो, मैं आत्मा क्या हूँ, कैसी हूँ, किस स्वभाव वाली हूँ, किन गुणों वाली हूँ, क्या भाग्य है मेरा, क्या रोल है मेरा, कैसे भगवान मुझे परम धाम वासी बनाता है, कैसे स्वर्गवासी बनाता है। ध्यान अंदर की ओर लाओ, ये है अंतर्मुखता। और हमारी दादियों ने ये बहुत तपस्या की, कई कई दिन मौन रखना, कई कई दिन भट्ठी में रहना, कई कई दिन चार्ट लिखना, आत्म अभिमानी स्थिति कैसी है। दादी गुलजार सुनाती है, मैं ट्रांस में कैसे गई, पहली बार बाबा ने हमें मौन रखवाया था और आत्म अभिमानी स्थिति का चार्ट रखने के लिए कहा था, तो कहा उस चार्ट को लिखने के लिए भी जगह जगह चिटकियां लगी रहती थी। कहा मैं खंभे के पास, बरामदे में खंभा था और वहां खड़ी थी और मैं इसी उसमें थी, मैं आत्मा हूं, और तुरंत मैं ट्रांस में चली गई, मुझे पता ही नहीं, वहां ही खिसक के धीरे धीरे नीचे बैठ गई और मैं ट्रांस में चली गई। ये है आत्म अभिमानी स्थिति, मीन्स अंदर की ओर हमारा ध्यान जाए। और अंदर कौन बैठी है, चमकती बिंदु मैं, कितनी सुंदर आत्मा इस तखत पर बैठी हूं, ये मणि चमक रही है, मणि बैठी है, मणि, ये शरीर तो क्या है, इस तखत पे मणि बैठी है बस। तो ध्यान को अंदर की ओर रखो, भले कर्म के समय कर्म में आओ, व्यवहार में आओ, देखो भी, बोलो भी, सुनो भी, लेकिन तुरंत अंदर की ओर आने से उस देखने सुनने का प्रभाव आपकी आत्मा पर नहीं पड़ेगा, और उससे आपके धीरे धीरे जो आत्मा के मूल गुण हैं, निजी संस्कार हैं, वो उभरते जाएंगे, बाहर आते जाएंगे, और जो देह भान के बने हुए संस्कार हैं, वो फिनिश होते जाएंगे, उनको स्थान ही नहीं मिलेगा। फिर योग की शक्ति से, हाँ, बाबा की याद से, तो आत्मा, हाँ, योग अग्नि होती है, इतनी शक्ति मिलती है जो वो संस्कार बदल ही जाते हैं। ये एक अलग पुरुषार्थ और विषय है, परंतु जितना मैं अंतर्मुखी बनती जाती हूँ, तो हमारी अंतर आत्मा नेचुरल अपनी नेचर में आती चली जाती है। जो बात मैं आपको पहले कह रही थी कि अपने मूल गुणों को नेचर बनाओ, अपने को ध्यान पे खिंचवाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा। हमें दादी ने बहुत अच्छी बात सिखाई है, सच मेरा अभी भी जिगर से दादी के लिए, एक दिल से मैं क्या शब्द कहूँ निकल रहा है। दादी कहती थी आत्मा तुम्हारी कैसी है, ये सोचो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और हमें सचमुच ही रट गया, मैं आत्मा हूँ निकलता नहीं था मुख से, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो कहा दादी ने, हम छोटे छोटे थे, हम अपने आप को ये एहसास कराते थे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो मैं जैसी हूँ शांत स्वरूप हूँ। आपकी ओरिजिनलिटी तो यही है, आपने रोल तो यही प्ले किया है, और 21 जन्मों में पहला जन्म भी यही है, तो उसमें मैं उन्हीं स्वरूप में, उन्हीं गुणों में, उन्हीं संस्कारों में रमण करूं अंदर ही अंदर। तो उससे हमारा देह भान, तो क्या देह भान से जुड़ी हुई सारी बातों से आप फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अभी दादी जानकी ने 21 जून को जो दिल्ली में लाल किला मैदान पे रेड फोर्ट पर इतना बड़ा इंटरनेशनल योगा डे का प्रोग्राम चला, 50,000 भाई बहने थे और आयुष मंत्रालय के भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। दादी ने इतनी अच्छी योग के ऊपर स्पीच की और इतनी नई बातें सुनाई, हम हैरान हो गए सब। और वो लोग भी कहते हैं, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे ये मतलब भी होता है। दादी ने कहा, योगा मीन्स ईगो फ्री, योगा मीन्स बंधन मुक्त, नष्टो मोह। वंडरफुल, वंडरफुल। आप सोचो, तो ये है आत्म अभिमानी स्थिति से। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। सभी ने मुलहरा डाल लिया, वहां तो गुरुजी ने शिष्य को दिया, यहाँ आदरणीय राजयोगिनी साक्षात आत्मस्वरूप में स्थित अनुभूति में समाई हुई दीदी ने हम सबको अंतर्मुक्ता का मुलहरा दे दिया। सबने ले लिया, मन में भी सोचना नहीं, आंखों से देखना नहीं और कानों से सुनना नहीं। तो ऐसी धारणा, ऐसा चिंतन का संकल्प लेते हुए हम दीदी को एक हाथ की ताली से शुक्रिया करते हैं और ऐसा ही हम अपनी शेष ब्राह्मण लाइफ में अभ्यास करते रहेंगे। अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ, मैं सिर्फ नहीं हूँ मोती हूँ, जगमग ज्योति हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में होती हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम जगमग ज्योति हूँ।